तारा रानी अमर कहानी नू वर दिता जगदंबे मात। कथा बिना ना पूरी होवे जगराते दी रात। कथा बिना ना पूरी होवे जगराते दी रात। हरे चंद्र तारा रानी दी सुन लो अमर कहानी। हरे चंद्र तारा रानी दी सुन लो अमर कहानी। सुन के अमर कथाएं भगतो सफल करो जिंदगानी। बोलो
कथा है बड़ी महान कर दिए कल्याण। कथा है बड़ी महान कर दिए
माता दे प्रिय भगतो जगत जननी जगदंबा मां दा जागरण बिना तारा राणी दी कथा दे अधूरा समझा जांदा है। जिस समय दा इतिहास है उस समय दे अंदर तारा राणी जो मां दी बड़ी उपासक सी उह जिस भी जागरण दे विच जाके भजन कीर्तन करिया करदी सी पगल लोग उस जगराते नूं ही संपूर्ण समझदे सन। अज इस कलयुग दे समय विच असीं पगल लोग हर जगराते दे विच तारा राणी दी कथा नूं सुना के जगराते नूं संपूर्ण करदे हां। इस कथा दे विच नास्तक आदमी नूं आस्तिक बनाया गया है। तारा राणी दी कथा इस प्रकार है जो आज जी नूं असीं व्याख्या रूप दे विच सुना रहे हां। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। हरे चंद्र तारा राणी दी सुन लो अमर कहानी। हरे चंद्र तारा राणी दी सुन लो अमर कहानी। सुन के अमर कथाए भगतो सफल करो जिंदगानी। बोलो
कथा है बड़ी महान कर दिए कल्याण। कथा है बड़ी महान कर दिए कल्याण।
एक राजा दत्त जी होए जिन्हें दो लड़कियां हुई तारा ते रुकमण। तारा उम्र च वड्डी है रुकमण उम्र च छोटी है। दोनों भैणां माता दी बड़ी सेवा करदियां हन माता दे व्रत रखदियां हन। एक दिन दोनों भैणां ने एकादशी का व्रत रख लिया। तारा ने रुकमण नूं बुलाया कि रुकमण इह लै पैसे ते बाजारों जाके कुछ फल ते कुछ हार लाए। रुकमण दे नाल कुछ सिपाही गए ते बाजारों जाके जिस फल ते हार रुकमण ने भैण तारा वास्ते लए ते अपने वास्ते लैन लगी ते उसके कन्नां च आवाज़ आई कि महाप्रसाद खा लो महाप्रसाद खा लो। जसले महाप्रसाद का नाम सुनया तो रुकमण सोचन लगी कि प्रसाद तो मैं रोज खाने हाँ, ये प्रसाद पता नहीं कितना उत्तम प्रसाद है कितना का महान प्रसाद है। उसने अपने पैसे का हिस्सा जोड़ा से उसका महाप्रसाद खा लिया। महाप्रसाद खा के घर में वापस आ गई तो अपनी भैन तारा कह लगी कि भैन एलो मैं थोड़े वास्ते फल ते हार लैन दे हन ते अपना वक्त मैं शहर पूरा करा। तारा ने पूछा कि किसके नाल ते रुकमण कहन लगी कि भैन मैं तो महाप्रसाद खाणी। महाप्रसाद का नाम सुने जिसले राणी तारा ने सियाणी सी समझदार सी एकदम गुस्से च आ गई। कहन लगी ये तू की कीता है तू माता की पत्नी होकर मांस खा गई ये मांस फिर जा खादियां हैं। एकदम गुस्सा चढ़ गया राणी तारा ने और गुस्से के अंदर आके राणी तारा ने रुकमण को श्राप दे दिता कि जान नीचने कोड़ चलिए गिर जे ये तू गिरजे वाला काम किया है। जिस वे श्राप दिता रुकमण गिरज बन के सामने खड़ी हो गई भैन में कि भैन मैंने की बना दिता तू। तो तारा कहन लगी जो तू किया सो तेन मिल गए हूँ इस रूप के तू अपना वक्त व्यतीत कर ते मात लोग दे माता के भक्तों की विपता बनेगी मुसीबत बनेगी उस वक्त तेरा श्राप जोड़ा कट्टा जाएगा। तो दसते हैं कि रुकमण गिरज के रूप के ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਰ ਕਥਾਏ ਭਗਤੋ ਸਫਲ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਧਰਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਇਤਨੇ ਭਗਤ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾਨ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਤਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਨ। ਤੋ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਰਵਾਸਾ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਲਤੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡੇ ਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ 4 ਵੇਦ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਿਸ਼ੀ ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ੀ ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੋਖਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਯੱਕ ਭੰਡਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਲੰਧਰ ਦੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਯੱਗ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਰਵਾਸਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੰਤ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵੱਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਹਰੀ ਚੰਦਰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਰ ਕਥਾਏ ਭਗਤੋ ਸਫਲ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਬੋਲੋ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਜੀ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਰਿਸ਼ੀ ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅੰਦਰ ਰਾਕਸ਼ਸ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਬੁੱਧੀ ਉਸਨੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ੀ ਦਰਵਾਸਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ।
ਰਿਸ਼ੀ ਦਰਵਾਸਾ ਜੀ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਸਜਣਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾ ਸਜਣਾ।
ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੰਤ ਰਾਕਸ਼ਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਡੰਗ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਏਗਾ, ਯੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਦਰਵਾਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਪੰਛੀ ਬਣ ਕੇ, ਅਨੋਖਾ ਪੰਛੀ ਬਣ ਕੇ, ਆਮ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪੰਛੀ ਬਣ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇਖੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਦੋਨੇ ਨੇ ਮਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਾਕਸ਼ਸ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੈਸੇ ਪੰਛੀ ਕਿ ਆਮ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪੰਛੀ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਛੀ, ਔਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਰ ਕਥਾਏ ਭਗਤ ਸਫਲ ਕਰੋ ਜਿੰਦਗਾਨੀ ਬੋਲੋ। ਇੱਧਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭੰਡਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਪ ਦਾ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਝਾੜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਦਾ ਕਰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭੰਡਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬੂਟੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਪ ਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਤਾਰਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਿਰਜ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਭੈਣ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਪ ਗਿਰਜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਪਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਰਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਉਸ ਰੁਕਮਣ ਨੇ ਗਿਰੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਰ ਕਥਾਏ ਭਗਤ ਸਫਲ ਕਰੋ ਜਿੰਦਗਾਨੀ ਬੋਲੋ। ਉਸ ਰੁਕਮਣ ਨੇ ਕਿਰਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਭੇਟਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਕੋ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਕਿਰਲੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਲੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖੋਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਬਿਆਨ, बोल मैं सकती नहीं, जुबान मेरी चलती नहीं, मैं इन्हें भक्तों को किवें दसा कि प्रसाद मुझे जहर मिलया होया जी। तो दसते हैं कि उन्होंने भक्तों ने जब आवाजा लगानिया शुरू कर दतियां कि भाई भोग प्रसाद का भोग जल्दी लगाया जाए ताकि ऋषियां मुनियां भंडारा जिहड़ा है छकाया जाए। भक्तों के कहन तो जिस वेले प्रसाद का भोग लगन लगा कपड़ा उठाया उस किरली ने चट के किया कि किरली कड़ाए विच टह पईआ के संतां दे मन विच आ। चट उस प्रसाद विच किरली ने छाल मार दिती। संतां भक्तां ने वेख लिया कि प्रसाद विच किरली गिर गई है ते भक्तां ने गुस्से दे अंदर आके किरली श्राप दे दिता कि जान नीचने कोल किरली एक ही किसी असीं ऋषियां मुनियां वास्ते भंडारा बनाया सी तू सारे दा सारा खराब कर दिता। कहने लगे किस प्रसाद को हम बाहर सुट दे, ये प्रसाद ऋषियों में नहीं बताया जाएगा, नवा प्रसाद हो तैयार किया जाएगा। जिस वे भक्तों ने बाहर जाके उस प्रसाद को उल्टाया ते विचों सप का करंग निकलिया। सप के करंग को वेख के भक्त हैरान हो गए कि यह जिहड़ी किरली है यह कोई साधनी है, यह कोई भक्त नहीं है जिन्हें साडी जान बचाने विच गिर गई, अगर ये ना डिगदी तो अरे असी मरे हुए सप का जहर खा के सब ने मर जाना। दौड़े दौड़े गए जिथे माता की जोत जग रही है, जाके मां जी को कह लगे कि मां जी असी एक बड़ी भारी भुल कर बैठे हैं, इस किरली ने साड़ी जान बचाई है तो असी इसनों उल्टा शराब दे दिता। इसका जन्म जड़ा है किसी उच्ची पुल में होना चाहिए। एक आवाज आई कि भक्तों शराब जड़े होंगे अटल होंगे ने, यह बदले नहीं जा सकते, हाँ अगर थोड़ी इसने जान बचाई है यह हो सकता है कि इसका जन्म उच्चे कुल में होगा लेकिन पालन पोषण वो पीला निकारी होगा। कुछ समा बीतिया उस रुकमण ने कन्या का रूप धारण करके राजा स्पष्ट कर जाके जन्म ले लिया। जिस वे जन्म लिया मंगलवार का दिहाड़ा हनेरी तूफान चखड़ चलने शुरू हो गए। राजा घबरा गया कि लड़की ने जन्म लिया है और इस तरह के हनेरी तूफान अज तक मैं कदम देखे नहीं। राजा जी ने पंडितों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, शास्त्रियों को बुलाया कि भाई अपने अपने शास्त्र खोल के देखो, ज्योतिष लगाओ, इस लड़की के लगन किस प्रकार देना, इतना हनेरी तूफान क्यों चल रहा है। उन्होंने पंडितों ने अपना अपना ज्योतिष लगाया तो कह लगे राजन इस लड़की के लगन जड़े हैं बड़े माड़े हैं, तुहाडे वास्ते तुहाडी प्रजा वास्ते तुहाडे राज वास्ते बड़े ही माड़े हैं, हो सके तो इस नूं हुणे मार दिओ। राजा लैके तलवार लगा मारन, राणी ने पकड़ लिया कि राजन ठहर जाओ, कन्या मारना एक बहुत वड्डा पाप है ते पंडितों नूं होर कोई उपाय पुछया जाए। पंडित कहन लगे अगर इस नूं मारना नहीं तो एक संदूक तैयार करो, उस संदूक दे विच इस कन्या नूं बंद कर दो, जो दान पुन तुसीं करना है संदूक च बंद करके इहनूं जाके दरिया च सट्टा दे दिओ, जिथे इहदे भाग होणगे उत्थे चले जाए। तो राजा ने एक बड़ा अच्छा संदूक तैयार किया। कैसा संदूक के हीरे मोतियां ना बाहरों जड़ दिता उसनों कि कोई लालच उड़ा के इस संदूक में कोई पकड़ लेगा और उस कन्या को पाल लेगा। राजा जी ने उस संदूक में दरिया के जाके ठेल दिता, हुण उस संदूक के बंद कन्या का रूप धारण किया हुआ रुकमण ने रुड़ती जा रही है तो मां नूं याद कर रही है कि मां जी एक छोटी जी गलती के पिछे मैनू किन्ने दुखों के लंघना पै रहा है, माँ जी मैनू इस पाप सागर के पार लगाओ। तो मां नूं याद कर रही है कि मां जी मैनू पार लगाओ इस पाप सागर के, मेरा इस दुनिया तो हुण कोई मेरा दर्दी नहीं है, मेरे मापिया ने मेरे नाल बड़ा जुल्म किया है कि मैनू संदूक के बंद करके दरिया में धक्का दे दिता है। मां नूं याद कर रही है, उधर दस्या है कि उस दरिया के किनारे से एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा है, उस ब्राह्मण ने जो अखा खोलिया तो की देखा कि दरिया के एक संदूक रुड़ता जा रहा। पंडित जी का मन किया कि संदूक के बाहर इतने हीरे मोती हैं कि अंदर इससे कितना कमाल होगा, क्यों ना अज यह संदूक अज मेरे हाथ आ जाए तो मैं कखा की कुली को महल खड़े कर लूंगा। हम पंडित जी बड़ी कोशिश करते हैं कि मैं संदूक को पकड़ लवा लेकिन पंडित जी पानी च पैर नहीं रखते, डरते हैं कि डुब ना जावा, किनारे दौड़ रहे। उधर कपील आदमी, पील कौन होंगे है जेडे दरियावान के किनारे से मछलियां पकड़ते हैं, उस वे इशारा किया पंडित जी ने कि भाई देख संदूक रुड़ता जा रहा है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा पर मेरे को संदूक पकड़िया नहीं गया, तू संदूक पकड़ के बाहर लाया जो माल होएगा सी तुहानू अद्धो अद्ध कर लांगा। उस पील ने चट छलांग लगाई ते संदूक नू पकड़ के बाहर लैंदा। जिस वेले संदूक नू पकड़ के बाहर लिया गया उस नू खोलिया विच जींदी जाग दी कन्या अंगूठा चुंग रही है। ते उस पील आदमी ने की कीता कन्ने नू चुकिया ते अपनी छाती दे नाल लगा लिया। हरीश चंद्र तारा राणी दी सुन लो अमर कहानी, हरीश चंद्र तारा राणी दी सुन लो अमर कहानी, सुन के अमर कथाएं भगत सफल करो जिंदगानी। बोलो
कथा है बड़ी महान कर दी कल्याण, 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 कथा है बड़ी महान कर दी कल्याण।
हरीश चंद्र तारा राणी दी सुन लो अमर कहानी, हरीश चंद्र तारा राणी दी सुन लो अमर कहानी, सुन के अमर कथाएं भगतों सफल करो जिंदगानी। बोलो
कथा है बड़ी महान कर दी कल्याण, कथा है बड़ी महान कर दी कल्याण।
उस पील ने उस कन्ने नु चुकिया ते सिद्ध अपने घर वाल आ गया। आके उस कन्या नू अपनी घरवाली की झोली में पाया ते कहन लगा कि ए कन्या सानू गंगा माई ने बख्शी है, असी इस कन्या नू पुत्रां दे वांगू पालना। ते कुदरती दसदे हन कि उत्थे भी उस कन्या दा नाम जिहड़ा रुकमण रख दिता। ते प्यार नाल उस नू रुको रुको कह रहे हुण रुको जिहड़ी है उस घर विच पल रही है। जिस वेले पल के जवान होई ते घर वाले नूं फिकर लग गया कि लड़की जवान हो गई है इहदा किसे ने किते विआह करना बड़ा जरूरी है। क्यों कि धीआं जिहड़ियां हन ते आखिर विआहणियां ही पैंदियां हन। वड्डे वड्डे राजे राणे ओह भी धी नूं घर विच नहीं रख सके। मापे नूं कोल भावें किन्नी भी दौलत होवे किन्ना भी पैसा होवे पर मापे धीआं नूं घर नहीं रख सकते। ये आखिर एक ना एक दिन ही पैंदियां। तो सपील ने लागी नूं बुलाया कि भाई पहले सगन ते लड़की जवान हो गई है, जिते भी तैनूं चंगा कोई घर बार लभदा इस लड़की का रिश्ता पक्का कर। हुण ओह लागी जिहड़ा है लैके सगन चल पिया। बड़ा ढूंढिया बड़ा देखिया अगर चंगा घर लभदा ते वार चंगा नहीं लभदा, जे वार चंगा लभदा ते घर चंगा नहीं लभदा। निराश होकर लागी जिहड़ा वापस आ रहा। जिस वक्त हरिपुर शहर के विचों गुजर रहे तो हरिपुर शहर के विच कुछ आराम कर लगा। हरिपुर शहर जिसन अजकल अयोध्या भी आखते हैं और उस नगरी के अंदर ही दूसरा जन्म लैके राणी तारा भी हरीश चंद्र की धर्मपत्नी रूप में रह रही थी। उस नगरी के अंदर वो लागी जिहड़ा आराम कर लगा। कुछ सज्जन पुरश मिले गलबात चल पई कि मैं पीलां की लड़की वास्ते कोई रिश्ता लभ आया, मैं रिश्ता मिलने गया। उन्हें दस्या कि इस नगरी का एक लड़का है अच्छा है, कारोबार उसका अच्छा है, घर बार सुंदर है। जब लागे देखा वाकई सारे गुण सन उस लड़के के अंदर तो उस लड़के सगन दिता ते दिन दिहाड़ा दे के वह लागी जरा वापस आ गया। आख उस पील कह लगा कि महाराज मैं तुहाडी लड़की का रिश्ता पक्का कर। मान का महीना 14 तारीख और तुम अपने बारात की तैयारियां शुरू करो। तो जिस दिन बारात सी बारात आई जो रीति रिवाज होंगे सारे सब किते आओ भगत की गई बारात दे रीति रिवाज पूरे किए गए। आखिर की होंगे है कि लड़की अपने मापे के घर को छड़ के सहुरे घर जाती है पर उसका दिल नहीं करता कि मैं अपने मापे के घर को छड़ के जावा। क्यों कि उस कारण उसने जन्म लिया होता है। पली पढ़ी लिखी जवान हुई होंगी है उस घर को छड़न वास्ते उसका दिल नहीं करता। आखिर धी सहुरे घर जाना ही पैंदा है। धी तो जिस वेले रुकमण अपने सहुरे घर चली गई। उसकी सस जड़ी सी रोज उन्होंने घर के सामने एक माता का मंदिर से उसकी सस जड़ी सी रोज उस मंदिर में जाके सेवा करया करती थी। एक दिन उसकी सस नूं कितने कोई काम पै गया ते रुकमन नूं कहन लगी कि रुकमन मैं अज रिश्तेदारों नूं मिलने वास्ते जाना ते मेरे मगरों मंदिर की सेवा तू करनी। बड़ा चा चढ़ गया, बड़े खुश हो गए रुकमन कि मैं मंदिर में सेवा करने का मौका मिले। सस चली गई, रात को रुकमन सुती नहीं कि मैं मंदिर में सेवा करने का मौका मिले। इतना चा और उस ही रात उस मंदिर में माता के नाम का जागरण हो रहा। घर बैठी सारी रात माता दी भेटा सुनती रही। सुबह हुई नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहने ते मंदिर में सेवा करने वास्ते चल पई। जिस वे मंदिर गई जाके की देखे कि वही भगत जो रात भेटा सुना रहे सन भजन कीर्तन कर रहे उन्होंने को जाके खड़ी हो गई ते कहन लगी भगतो तुसी सारी रात मां मां करदे हो ये तुहानू कोई देंदी भी है? वो कहन लगे रुकमन तू की गल कर रही है, ये मां अन्ने नू लोवां देंदी है, गूंगे नू जुबान देंदी है, नंगे नू वस्त्र देंदी है, भुखे नू रोटी देंदी है, पर जड़ा इनू एक मन होके त्यावे उदी आस ते मुरादे पूरी कर देंदी है। कहन लगी अच्छा, जेब दे चाहत मारिया कुछ पैसे निकले। कहन लगी चलो मेरी भी अरदास करो कि मेरे घर मां खुशी की दात बख्शे, पुत्र की दात बख्शे ते मैं माता के नाम का जगराता करवावांगी। उन्हें भगतों ने रुकमन की अरदास की। अरदास अरदास रुकमन दे नाम की अरदास, एता सुखना की अरदास, तारा ने सतारा झूले कि तेजा बाजे गनकारा, संत संतरी सभी माता को प्यारा, जोक मन होके बोल जनकारा, सो माता का भक्त प्यारा, बोल सांचे दरबार की। तो भक्त ने सच्चे मन ने जैसे रुकमन की अरदास की सेवा करके घर वापस आ गए। कुछ समा बीतया, माता की अपार कृपा हुई, उसके घर सुंदर पुत्र पैदा होया। बड़े खुश कि मां ने मैनू पुत्र बख्शिया। पुत्र ने मोह च पै गई, पुत्र के प्यार च पै गई, इतना मोह च पै गई कि पुत्र साल का, दो साल का, तीन साल का हो गया। पर रुकमन ने जरा जगराता सुखिया होया भुल गई कि मैं कोई जगराता भी सुखिया हो। तो मां ने एक दिन सोचा ये तो भुल गई कि मैं याद किवें करवाव, सुखना सुखन वेले तो बड़िया सुखना सुखिया जाए कि मैं ये करांगी मैं वो करांगी, लेकिन भुलन का यह मन में कदे भी नहीं आना चाहिए। जे भुल गए तो की फायदा। मां ने सोचा कि इनू याद किवें करवाया जाए। मां को याद करवाने के बड़े तरीके ने, बीमार कर देना, संकट च पा देना, कोई ठोकर मार देनी, बड़े बड़े तरीके ने। पर मां ने रुकमन को किवें याद कराया कि रुकमन एक दिन अपने घर सुती हुई है, अचन अचेत उसनू सुपना आया। सुपने के अंदर रुकमन की देख रही है कि मां शाहशाह सिंह से सवार रुकमन के सामने आके खड़ी हो गई ते रुकमन नू कुछ कह रही है कि ए रुकमन उदो तो बड़ी सुखना सुखी थी, हुण भुल गई कि मैं जगराता करवाना। ओहो याद आ गया, अखां खोलियां रुकमन ने, पर उदो सुखना सी। माता की तस्वीर ओझल हो गई। सुबह हुई नहा धो के फिर मंदिर गई, जाके उन्हां भगत पुजारियां नू कहन लगी कि भगतो मैं भुलण हार भुल गई, मैं तुहाडे कोलों एक सुखना सुखी थी, अरदास करवाई थी कि मेरे घर मां पुत्र की दात बख्शे तो मैं जगराता करवावांगी, तां भुल गई। मैं दसो कि मैं जगराता करवाना है कि विधि की तौर तरीका है जगराते का। तो भगत कहन लगे कि रुकमन तेरा जगराता तो असीं जरूर कर देंगे, पर जगराता तेरा संपूर्ण तां होना है कि जे खुद तारा राणी चल के तेरे घर जागरण के भजन कीर्तन करे तो फिर तेरा जगराता संपूर्ण होना है। कहिंदी अच्छा, जदों तारा का नाम सुनिया सोचन लगे मन दे विच कि मेरी भैन का नाम ही तारा सी, वह भी माता जी बड़ी पुजारन सी, कि वही उन्हें दूसरा जन्म लैके श्लोक में आई हो। तो पुछ पुछा के जिस वे रुकमन तारा के महलों च गई, जाके कि जिस दरवाजा खटखटाया अंदरों भैन तारा ने जिस देखिया अपनी भक्ति के जरिए ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੁਕਮਣ ਦੋਨੇ ਗਲੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਭੈਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਰੁਕਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਭੈਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਜਗਰਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰੇ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਜਗਰਾਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਭੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤਾਰਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਲ ਦੇ। ਡਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਹਲਦੀ ਜਾਂ ਕੇਸਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ, ਨਾਲ ਗੁੜ ਚੀਨੀ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਈਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ, ਝੱਖੜ ਹੋਵੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਭੈਣ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਰੁਕਮਣ ਕਾਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਆ ਕੇ ਡਲ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਗਰਾਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਰੁਕਮਣ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਗਰਾਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਗਰਾਤਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਗਰਾਤਾ ਹੈ, ਰੁਕਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਗਰਾਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਜਗਰਾਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਗਤੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਸਤਕ। ਨਾਸਤਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਉਹ ਆਸਤਕ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ कि राजा हरिश्चंद्र पता चल गया कि आई नगरी के अंदर जगराता ना, और रानी तारा इस जगराते में जरूर आएगा। राजा जी मन च सोच रहे कि अज भावे कुछ भी हो जाए मैं तारों जगराते नहीं जान देना। सोचने लगे मैं तो नींद आ जाती है, कोई ऐसा तरीका बनाया जाए कि जिस के नाल मैं नींद ना। राजा जी ने की किया कि अपनी उंगल से चीरा दे लिया, चीरा दे के लूण मर्च की पट्टी कर ली ताकि रात को नींद ना आ गए महला च। सब तो पहले राजा जी ने की किया कि महला के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दी, इतों तक कि ताले लगा दते कि बाई चांस कितने मैं नींद आ भी जाए तो राणी तारा जा ना सके। हुण राजा जी ने राणी तारा नूं आवाज लगाई कि तारा मेरी उंगल ते बड़ी दर्द हो रही है, मैनू अपने पट दा सराणा दे दे। क्यों कि अगर ये जाएगी मैनू फट पता लग देगा। हुण राणी तारा राजा जी दा सिर दबा रही है, बाजू दबा रही है, सेवा कर रही है, और टाइम होया जगराते दे जाण दा। इधर राजा जी सौने रहे, राणी तारा मां दे के अरदास कर रही है, फरियाद कर रही है कि मां जी ठंडी ठंडी हवा चलाओ ताकि राजा नींद भर के सौ जाए तो मैं जाके ते जरूर जाऊँ। सच्चे मन नाल मां नूं याद कीता, ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई, राजा जी एकदम सौ गए। आस्त आस्त अपना पट राजे दे सिर थले बाहर कढ़े, सराणा रखे राजे सिर थले, नहा धोके साफ सुथरे कपड़े पहने और पूरा हार शिंगार राणी तारा ने कीता। पूरा हार शिंगार करके राणी तारा लगी जिस वेले जगराते ने जाण की देख रही है कि सब दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, इथों तक के ताले लगे हुए। राणी बड़ी हैरान कि राजे ने अज पूरा बंदोबस्त किया होया, अज नहीं मैं जा सकती, देख रही है कि कोई रास्ता मैं मिले, लेकिन सब रास्ते बंद। आकर उतान ध्यान बजा रोशन दान खुला से, कह लगी एक रास्ता है जो चली गई तो ठीक है, तू लै के रस्ता बड़ी मुश्किल के नाल बड़ी कोशिश करने नाल राणी तारा उस रस्ते जरिए बाहर आ गई। जसले बाहर आ गई की देख रही है एक हनेरी रात और दूसरा बदल छाए हुए। तीसरा थोड़ा जगह गई उसको एक चोर मिल पाया। राणी तारा ने की देखा कि चोर उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। बड़ी जल्दी जल्दी मां को याद किया राणी तारा ने, ते पहुंच के कितने रुकमण के जगराते। इधर राजा हरिश्चंद्र अख खुल गई, उठ के देखे कि राणी तारा महला च है, लगे इधर उधर देख के राणी तारा गई हो गई किस पास, सारा महल छान मार राणी तारा होवे तो नजर आवे। दरवाजे देखे खिड़कियां देखिया उस बंद ताले लगे हुए। राजा बड़ा हैरान अत उतान ध्यान बजे रोशन दान खुले रस्सा नमक रहा, कह लगा ओहो अज नवे रस्ते नस गए, इस डर नहीं पाने के राजा मैं की कहेगा। गुस्से के अंदर आके खंडा हज पकड़ लिया कि अज मैं तारा छड़ना नहीं, क्यों यार फिर मेरे हुक्म ठुकरा के चले गए, अज मैं रोज वो झंडे मुका देना, इतना गुस्सा राजा। गुस्से ना परे हो राजा जी जिस वे बाहर आए उसने हनेरी रात बदल छाए हो, और जो चोर रस्ते राजे से मिल पे, चोर ने आवाज लगाई कि भाई तो कौन है ठहर गए थे। राजा कह लगा मैं तो ठहर गया, तू है कौन, कह लगा मैं चोर। राजा कह लगा तू चोर है, मैं काला चोर हाँ। चोर कह लगा बड़ी देर बाद आया, जे कि पहले आ जाता तो दौलत आमी बस गए तो मैं लुट लेंदे। राजा कह लगा कि भाई साड़ी की चीज सानू दस रहे तू, चोर समझ गया ये तो राजा जी माफी मंगी चोर जी, दस लैके निशानी राजा जी कितने पहुंच गए, जिते रुकमण का जगराता हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, बाहर खड़े हैं, अंदर जान का हुक्म नहीं, वो नहीं मनते माता नु, कहते सब पहाड़ा बाजी को माता मुंह कहने, बाहर खड़े हैं कि जो तारा बाहर आई आज असल में छड़ना नहीं। उधर तारा उन्हें भक्तों कह रही है भक्तों छेती छेती भोग लगाओ ताकि मैं सुत्या सुत्या राजा जी के घर पहुंच जाऊं। तो भक्तों ने भोग वरताना शुरू किया, जिस वे राणी तारा की बारी आई तो तारा ने झोली प्रसाद को आया तो लगी बाहर, जिसने बाहर देखा राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं, डर गई मां नूं याद करके बाहर आ गई। राजा ने रस्से खिलार लिया कि तारा ए झोली में की पाया करो, कह लगी राजा जी ने अपनी झोली च माता का प्रसाद पाया। तो राजा कह लगा दस मैं, राणी तारा घबराई हुई मां नूं याद किया तो झोली राजे अगे कर दते। राजा देख के बड़ा हैरान हो गया कि यह बनया, मैं तो अपनी अखां दे नाल कुछ होर देखा सी, यह तो कुछ होर ही बनया। राजा हैरान हो गए, राणी तारा गुस्से च कहन लगा कि तारा मैनू अपना पंथ दस, जिस माता वास अद्धी रंग उठ के नस पे नहीं। राणी तारा कहन लगी राजन ये पंथ मेरा खंडे की तार वर्गा है कि तुहाडे को चलिया नहीं जाना, तो राजे तुसीं जिद्द नूं छड्ड देना, ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ। ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਹੀ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ, ਵਚਨ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਲਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਰਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੱਸ। ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕਰ ਚੀਰ ਲਓ, ਚੀਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਣੀ ਇਹ ਮਰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੋ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਨੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਚੀਰਿਆ ਅਤੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਨੀਚੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਲਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਮ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਝੁੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਓ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭੋਗ ਤਾਂ ਲਗਾਓ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਤੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦੜੀ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਛਮ ਛਮ ਕਰਕੇ ਨੀਰ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸਾ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਰਾਜਨ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾ। ਰਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤਕੜਾ ਘੋੜਾ ਰਾਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਾਰਾ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਕੇ ਮਹੱਲਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਲਵਾ ਬਣੇ ਆ ਹਲਵਾ। ਰਾਜਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਮਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇ ਤਾਰਾ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਸੋ ਮੰਗ ਲੈ। ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ।